नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैंड में आप सभी का स्वागत और आज आपके साथ मैं हूं दिव्या तोमर। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग प्रतियोगिता में आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में चार भारतीय महिला पहलवान फाइनल में पहुंची। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सतीश कुमार करुणाकरण पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 के दूसरे दौर में हार गए हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2025 के भारत के इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम जारी किया। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर अपना परचम लहराने वाले नीरज चोपड़ा फिर से अपने थ्रो से कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। आज मध्यरात्रि 12:22 से नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी शक्ति प्रताप सिंह की ये खास रिपोर्ट।
आज से शुरू हो रहे भाला फेंक प्रतियोगिता डायमंड लीग में नीरज अपने थ्रो का दम दिखाएंगे। नीरज दो बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं। इससे पहले नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। पेरिस ओलंपिक में भारत के गोल्डन बॉय ने 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। अरशद नदीम डायमंड लीग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि नीरज की यह दूसरी डायमंड लीग है। कांस्य पदक विजेता एडिसन पीटर्स और टोक्यो ओलंपिक्स के पदक विजेता जैकब वर्डलेस भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लंबे समय से कमर की चोट से जूझ रहे नीरज 2022 में डायमंड लीग चैंपियन थे। उसके पिछले साल अमेरिका के यूजीन में विनर टेक ऑल डायमंड लीग फाइनल में चेक गणराज्य के याकूब वर्डलेस के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। मौजूदा सत्र का डायमंड लीग फाइनल 14 सितंबर को ब्रुसेल्स में होगा। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें डायमंड लीग मीटिंग सीरीज तालिका में शीर्ष 6 में रहना होगा। 8 अगस्त को ओलंपिक फाइनल के बाद नीरज ने स्विट्जरलैंड में प्रशिक्षण शुरू कर दिया और चोट की समस्या के बावजूद वह इस सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
राकेश, जैसा कि शक्ति ने बताया कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा भी फॉर्म में हैं और अभी तो सिल्वर मेडल जीत के ही लाए हैं, तो अब डायमंड लीग में आप उनसे कैसे प्रदर्शन की उम्मीद रख रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और ओलंपिक्स के लिए जो जबरदस्त तैयारी की गई थी
जी।
तो उसका मुझे लगता है कि जो बेहतरीन नतीजा है वो ओलंपिक्स में उनके लिए नहीं निकल पाया, तो इस डायमंड लीग के अंदर वो यहाँ पर गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के अरशद ने, वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो एक चांसेस आपके ऊपर अच्छा रहता है, क्योंकि उनके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा का ही रहा था। लेकिन नीरज चोपड़ा जो है काफी टाइम से ग्रोइंग इंजरी से भी थोड़ा जूझ रहे हैं। अब वो कितने ठीक है कितने नहीं, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन उसका कराने की संभावना है, तो मुझे लगता है ये जो सीजन खत्म होगा डायमंड लीग का जो फाइनल होना है उसके बाद ही वो उसकी तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन प्रदर्शन उनको करना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक ईयर में ना कोई भी एथलीट होते हैं जो वो टॉप फॉर्म में होते हैं, उससे अच्छी टॉप फॉर्म उनकी कोई हो नहीं
सकती।
ओलंपिक का मेडल भी उन्होंने जीता और सबकी उम्मीदें भी उनके साथ हैं, और जो कमियां वहां रह गई, जो जैसे उन्होंने फाउल्स बहुत किए थे, 4 फाउल उनके हो गए थे, तो मुझे लगता है कि उस कमी को वो पूरा करेंगे और जितनी आपके मैक्सिमम फायदा उठा सके उसमें जाएंगे। जो पहली एक डायमंड लीग का हुआ था उसमें भी उन्होंने रजत पदक जीता इस साल, तो मुझे लगता है कि उसमें चेंज करेंगे। ओलंपिक में भी रजत पदक आया इस साल, तो शायद इस बार जो है वो आज जो कुछ घंटों के बाद इवेंट ये शुरू होगी तो इसमें शायद वो उसको स्वर्ण पदक में बदलेंगे।
बिल्कुल। जॉर्डन के अम्मान में जारी अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में चार भारतीय पहलवान अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठन फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्या कहेंगे इस पर राकेश, हमारी जो पहलवान हैं वो फाइनल में पहुंच गए, कितने पदक लाने की उम्मीद आप रखते हैं?
देखिए, 4 पदक तो पक्के हो चुके हैं और 2 पुरुष वर्ग में हमारे ग्रीक रोमन के अंदर आ ही चुके हैं।
बिल्कुल।
तो रौनक भैया ने जीता, साई परिनाथ ने जीता, तो एक अच्छा प्रदर्शन हमारा। और जूनियर लेवल पे जब हमारे खिलाड़ी अच्छे करते हैं तो ये नई पौध है, यही आगे की सामने आएंगी। जैसे हमने इस ओलंपिक्स में देखा कि हमारे 6 पहलवान गए थे, तो उसमें एक पुरुष पहलवान था अमन सहरावत, वो मेडल लेके आए, लेकिन जो 5 थी वो महिलाएं थी। तो एक बड़ी चीज है कि महिला कुश्ती अभी हालांकि नई है,
अगले ओलंपिक तक हम पदकों की उम्मीद कर सकते हैं।
बिल्कुल, कहेंगे यही बच्चे आगे जाके पूरी अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भारत सरकार का बहुत अच्छा चलता है जूनियर लेवल पे भी, और यही जब सीनियर में आएंगे और अब यहाँ मेडल जीतने के बाद इन सबका एक चाहत होगी हम टॉप्स की स्कीम में आ जाए, तो टॉप्स की स्कीम में आके इनको सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी और वहां पर ये बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे। और देखिए इतना अच्छा, जैसे अभी विनेश फोगाट ने फाइनल में प्रवेश किया था, वो टेक्निकल चीजों की वजह से उनको मेडल नहीं मिल पाया, वो एक अलग मुद्दा है कि
भाई वजन थोड़ा अच्छा,
लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो इससे सारी जो हमारी लड़कियां हैं उनका बड़ा उत्साह है। और देखिए अच्छी बात मुझे लग रही है, जो पुरुषों ने भी जो दो मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, वो ग्रीको रोमन में जीते। ग्रीको रोमन जो है ओलंपिक्स में सबसे पहले ग्रीको रोमन से शुरुआत हुई थी 1896 में, और जो ये फ्री स्टाइल की रेसलिंग है ये बाद में ओलंपिक्स के अंदर आई। तो ग्रीको रोमन में हमारे पहलवान हल्के साबित होते हैं, तो ये अगर ग्रीको रोमन में जूनियर वर्ग में हम अच्छा कर रहे हैं विश्व स्तरीय चैंपियनशिप के अंदर, तो निश्चित रूप से हम
हो सकता है ओलंपिक्स के अंदर। और इसमें क्या डिफरेंस होता है, हमारे श्रोता अगर जानना चाहें,
फ्री स्टाइल के अंदर क्या होता है कि आप उसको कहीं से भी उठा पटक कर सकते हैं। ग्रीको रोमन में आप कमर के नीचे दाव नहीं लगाते, कमर से ऊपर के दाव उसमें चलते हैं। तो ये पहले ओलंपिक्स के अंदर मेन यही चलती थी। तो जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है वो बाद में ओलंपिक के अंदर 1904 से आई, जबकि ग्रीको रोमन 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी उससे ही शुरुआत थी। तो ये एक अच्छी बात है, ग्रीको रोमन में भी अगर हमारे पहलवान अच्छा करेंगे तो हमारे पदकों की संख्या ओलंपिक्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिपों में सीनियर लेवल पे भी ज्यादा
बढ़ेगी। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपाली पांडे की रिपोर्ट।
इस चैंपियनशिप में भारत ने अब तक दो कांस्य पदक जीते हैं। कल खेले गए सेमीफाइनल में महिला पहलवानों ने मुकाबला जीतकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। अदिति ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में अलेक्सांड्रा बेरोजोवस्काया को 8-2 से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। फाइनल में उनका मुकाबला ग्रीस की मारिया लुइजा डिंका के साथ होगा। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन की कैरोलिन शफरिक को 10-0 को और उसके बाद नारिन मोहम्मद अब्दिलाल को 4-2 से हराया। नेहा ने सेमीफाइनल में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की अन्ना स्ट्रेटेन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सोतुसई से होगा। 65 किलोग्राम भार वर्ग में पुलकित मिश्र की मराम इब्राहिम एली को 3-0 से हराकर फाइनल में पहुंची। अब उनका अगला मुकाबला डारिया फ्रोलोवा से होगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2025 के भारत के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल जारी किया है और एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीसीसीआई ने कहा कि 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज अगले साल 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 22 जनवरी से 12 फरवरी के बीच 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का आखिरी इंग्लैंड दौरा 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए था, जिसमें वो 2-1 से आगे थी, लेकिन अंतिम मैच को कोविड महामारी के कारण जुलाई 2022 में पुनर्निर्धारित किया गया था। एडबेस्टन के निर्णायक टेस्ट में भारत 7 विकेट से हार गया, जिससे ये श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ रही और भारतीय टीम सीरीज नहीं जीत पाई थी। राकेश, क्या लगता है कि इस बार भारतीय टीम उस कसर को पूरा करना चाहेगी?
इसमें बिल्कुल आपको करना होगा, क्योंकि हम देखिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें भी हम चैंपियन बनना चाहते हैं, और ये जो सीरीज होगी ये 2025 से 27 तक की जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप की, उसका हिस्सा होगी।
और उससे तो पहले ऑस्ट्रेलिया दौरा भी है भारत का, उसमें
5 टेस्ट है। ये एक अच्छी बात है कि हम तो टेस्ट मैच के जो बड़े हिमायती हैं, और मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी का असली जो परीक्षा होती है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर होती है, और खास तौर पे इंग्लैंड के अंदर जब आप खेलेंगे। और इंग्लैंड में आप देखिए जो टेस्ट मैचेज रखे गए हैं ये ज्यादातर ऐसी जगहों पे रखे गए हैं जहां पर स्विंग बॉलर्स को बहुत ही मदद मिलती है, तो फास्ट बॉलर्स की भी हमारे अग्नि परीक्षा होगी और हमारे बल्लेबाजों की भी बहुत होगी। और एक अच्छी खबर आपको और दे दूं कि जो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन, उसने भी एक चीज की अनाउंसमेंट की है कि 2026 के अंदर जो भारत के साथ एक टेस्ट मैच खेला जाएगा महिलाओं का टेस्ट मैच, वो लॉर्ड्स में होगा। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, सबका सपना होता है, और ये पहली बार होगा कि कोई महिला टेस्ट वहां पर खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ने अभी वहां पर वनडे मैचेस खेले, लेकिन टेस्ट मैच वहां पहली बार होगा महिलाओं का, तो ये भी भारत को एक अच्छा गौरव और एक प्रेरणादायी चीज मिलेगी कि भाई इतनी बड़ी जगह उनको खेलने का मौका मिलेगा।
सीएट क्रिकेट ट्रेडिंग अवार्ड 2023-24 की हाल ही में घोषणा की गई है, जिसमें कई दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी मनीषा खन्ना की ये विस्तृत रिपोर्ट।
सीएट क्रिकेट ट्रेडिंग अवार्ड 2023-24 में भारत के कप्तान रोहित शर्मा को कल मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, जबकि पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। भारत के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली को पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को वनडे बॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। 2023 वनडे विश्व कप के दौरान शमी का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें वे 24 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे। इस वर्ष की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 712 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को पुरुष टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर चुना गया। बीसीसीआई सचिव जय शाह को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए खेल प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को T20 इतिहास में सर्वाधिक मैचों में देश का नेतृत्व करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उप कप्तान स्मृति मंधाना को वर्ष की महिला भारतीय बल्लेबाज नामित किया गया, जबकि दीप्ति शर्मा को वर्ष की भारतीय गेंदबाज के रूप में मान्यता दी गई। शेफाली वर्मा को महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने की उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्मृति चिन्ह मिला। ये उपलब्धि उन्होंने इस साल की शुरुआत में चेन्नई टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 194 गेंदों पर हासिल की थी। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
ओलंपिक के बाद सभी खेल प्रेमियों की नजर अब पेरिस पैरालंपिक 2024 पर टिक गई है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त से हो रही है और इस बार भारत की तरफ से पैरालंपिक में कुल 84 एथलीट हिस्सा लेंगे। तो राकेश, आप इस बार कितने पदकों की उम्मीद करते हैं पैरालंपिक टीम से?
देखिए, अभी तक जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है पैरालंपिक से जुड़े लोगों से, एथलीटों, कोचेजों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, तो सबकी उम्मीद लग रही है कि भाई 25 के करीब पदक जीतेंगे। पिछली बार 19 पदक जीते थे, तो पैरालंपिक्स में बड़ा उत्साह है और भारत सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने हमारे जो साधारण ओलंपियन हैं और पैरालंपियन है सबको एक समान तरह की सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की है। इनामी राशि बराबर की मिलती है और सबका जो है उत्साह बढ़ाने के लिए खेल मंत्री ने जो सेंड ऑफ हुआ था उसमें खेल मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी खुद आए थे और एक जत्था हमारा पहुंच गया है पेरिस में। तो सब में मतलब उत्साह है, अच्छी सुविधाएं सबको मिल रही हैं, ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है, जिस तरह की कोचिंग वो चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन इस बार रहेगा।
और इस बार आपको लगता है कि टोक्यो की कमी कहीं ना कहीं पेरिस में पदक जीत करके, और जो पेरिस ओलंपिक में हम नहीं जीत पाए तो पैरालंपिक में जीत करके कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी?
बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जितने हमने साधारण जो हमारे एथलीट हैं उन्होंने पेरिस ओलंपिक में जीते हैं, तो पैरालंपिक में उससे तो कहीं ज्यादा पदक जीतेंगे।
जी, जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सतीश कुमार करुणाकरण पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 के दूसरे दौर में हार गए हैं। सतीश 70 मिनट तक चले इस मुकाबले में पहले गेम की बढ़त गवाकर 21-18, 18-21, 8-21 से थाईलैंड के कंटाफोन वांग चारोएन से हार गए। इस हार के साथ ही बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 इवेंट में भारत का अभियान समाप्त हो गया। बैडमिंटन में कहीं ना कहीं राकेश देख रहे हैं कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका कारण
देखिए, इसमें क्या है कि टॉप के हमारे खिलाड़ी ने विड्रॉ किया इस चैंपियनशिप से, ओलंपिक के बाद सब थके हुए थे काफी, तो उसमें गए नहीं। तो हमारे जो जूनियर लेवल के खिलाड़ी उनको इसमें मौका मिला जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ होती है। लेकिन बैडमिंटन की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो प्रदर्शन में निरंतरता ना रहने की है कि इसके टूर्नामेंट बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट होते हैं। एक टूर्नामेंट खत्म होता है तो आपको घर वापस आने का भी मौका नहीं मिल पाता कि दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, तो गैप बहुत कम है दो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बीच में। बहुत ज्यादा प्रेशर और फिटनेस का लेवल उतना रख पाना किसी भी देश के खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो इसको सुनती नहीं है। और जो कैलेंडर है ऐसा जबरदस्त बनाया गया है कि बस आपको लगातार खेलते रहना
बिल्कुल काफी मुश्किल होता है। और पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कबड्डी के जरिए दोनों देशों के बीच कबड्डी कनेक्शन का जिक्र किया है। क्या स्टोरी है राकेश इसकी?
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की कि पोलैंड के साथ हमारा कबड्डी का नाता है, क्योंकि पोलैंड की टीम यहाँ पर 2016 में अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हुआ था कबड्डी का, उसमें खेलने के लिए आई थी। और वो पहली बार ऐसा था कि जो पोलैंड के ही जो खिलाड़ी हैं वो हमारे दो खिलाड़ी प्रो लीग में जो हमारी कबड्डी की होती है उसमें खेल चुके हैं। 2015 में उनके निखिल स्पाक्ट्रो जो है वो वहां पर आए थे और बेंगलुरु बुल्स का वो हिस्सा थे। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी उनके पेट्रो पाम्बलुक आए 2023 के अंदर। तो एक अच्छी चीज है कि यूरोपियन खिलाड़ी हमारे कबड्डी में खेले, और प्रधानमंत्री ने इस बात की सराहना की है कि पोलैंड कबड्डी में अच्छा करती है।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
नमस्कार।